नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचे को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद आखिरकार केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुपुरा में के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। रहीम को एक 15 वर्षीय विकलांग लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 196 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।